ये आकाशवाणी है, अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया हो। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान अपने अनुभव के बारे में द इमरजेंसी डायरीज लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों से सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया है जिन्हें आपातकाल के दौरान वे काले दिन याद हैं या जिनके परिवारों ने उस दौरान कष्ट झेले हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में युवाओं को जागरूक करेगी। संविधान हत्या दिवस हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है। एक रिपोर्ट।
1975 में आज ही के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के खतरे का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। सब कुछ केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया गया था। सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों ने अदालतों को राष्ट्रपति के आपातकाल घोषित करने के फैसले पर सवाल उठाने से रोक दिया था और प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संविधान हत्या दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजधानी से एक यात्रा निकाली जाएगी जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिली सीख के बारे में जागरूकता फैलाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 1975 में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाना था। नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री शाह ने ये बात कही।
लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कर कई लोगों के कैरियर समाप्त भी हो गए और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच विशिष्ट तथा अनूठे संबंधों पर बल देते हुए आपसी रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर राम गुलाम को भारत आने का निमंत्रण दिया। भारत के शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन यान को भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 12:01 पर अमेरिका में फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 कल शाम 4:30 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास से 2027 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कल मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित वर्चुअल सत्र में कहा कि सरकार ने भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप सेवा, सुशासन और नवाचार पर आधारित योजनाबद्ध विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। एडिलेड में एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 से हरा दिया है। इंग्लैंड ने कल मैच के अंतिम दिन 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 पर 373 रन बनाए। दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में 85.29 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। दक्षिण अफ्रीका के दोउस में दूसरे और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।